الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो ये हमारी बुध की सुबह की क्लास होती है, जो उमूर खानदारी में हुस्न इंतज़ाम के मौजू के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसमें हम अपने हजरत के जो सिलसिला दुरूस है, जो उन्होंने एक रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ के दौरान किए थे, सुबह के वक्त वो भी दुरूस हुआ करते थे और ख़वातीन में वो ब्रॉडकास्ट होते थे। रात के दुरूस जो हैं वो मर्दों में होते थे और सुबह के दुरूस जो हैं वो ख़वातीन में होते थे। तो उन्हीं को फिर किताबी शक्ल में छापा गया। तो ये किताब जो आपके सामने है, स्क्रीन पर हो या आपके सामने किताबी शक्ल में मौजूद हो, तो ये वो दुरूस हैं। तो इनमें फिर हमने पहले हाउस होल्ड मैनेजमेंट का जो मौजू था वो पढ़ लिया था, और उस बाद फिर हमने रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तेदारियां निभाना, ये पढ़ना शुरू किया था। रमजान मुबारक से पहले जो आखिरी लेक्चर हुआ था, उसमें हम बच्चों के साथ ताल्लुक के मौजू पर बात कर रहे थे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हजरत ने बहुत सारी बातें हमें बताई, अगरचे ये मुख्तलिफ मौजूआत में ये पहले भी बातें हैं, उनमें से अक्सर हो चुकी थी। जैसे मिसाली औरत का जो मौजू हमने पूरा का पूरा, वो भी एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स ही था हजरत का, और पूरी किताबी शक्ल में वो भी मौजूद है। तो मिसाली औरत के अंदर भी जब हमने यानी पढ़ा था, तो उसमें भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही थी कि भाई कैसे औरत को जो है वो अपने रिश्तेदारियों के साथ निभाना होता है, रिश्तेदारों के साथ रहना होता है, रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर भी हजरत ने उन्हीं बातों को मुख्तलिफ अंदाज में या कुछ नई बातें उसमें शामिल करके बयान फरमाया। तो बड़े काम की बातें होती हैं, बड़ी अहम बातें होती हैं। अल्लाह ताला हमें उनको समझने की, सुनने की और अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। इन बातों के समझ ना होने की वजह से फिर बहुत मसले इंसानों की जिंदगियों में पैदा हो जाते हैं, और ये जाहिर है चूंकि इनका ताल्लुक घरों से होता है, रिश्तेदारियों से होता है, तो जब अच्छे तरीके से उनको निभाया ना जाए तो फिर रिश्तेदारियां खराब होती हैं और घर बिगड़ते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे पहले खाविन से ताल्लुक के बारे में हजरत ने फरमाया था, वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद फिर सास के साथ था अलग से, फिर एक नंबर टू उसमें क्या था, सास के साथ ताल्लुक था बाद में देख रहा हूँ, नहीं ससुराल वालों के साथ ताल्लुक। तो इन जनरल जो है ससुराल वालों के साथ ताल्लुक, जिसमें सास भी आ जाती हैं, ससुर भी आ जाते हैं और नंदे भी आ जाती हैं वगैरह, और फिर उसके बाद फिर अलग से तीसरे नंबर पर सास के साथ ताल्लुक, क्योंकि ये ताल्लुक जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ताल्लुक, सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक होता है, क्योंकि सास जो होती हैं वो शोहर की वालिदा होती हैं। तो फिर उसके बाद चौथे नंबर पर बच्चों के साथ ताल्लुक, यानी खुद जो ये वालिदा होती हैं, ठीक है, तो अपने बच्चों के साथ इनका कैसा ताल्लुक होना चाहिए। तो एक तरह से यह तरबियत औलाद का भी मौजू बन जाता है, क्योंकि जब अच्छा ताल्लुक होगा तभी आप किसी की अच्छी तरबियत कर सकेंगे, उसको अच्छी तालीम दे सकेंगे। तो बच्चों के साथ ताल्लुक में हमने एक मौजू पढ़ लिया था, बच्चों को इनाम दें और बाउसूल रहें, ये भी हमने पढ़ लिया था। बाउसूल रहें यानी आपके कौल व फेल के अंदर तजाद नहीं हो कि कभी कुछ कह रही हैं कभी कुछ कह रही हैं। तो बच्चे भी इन बातों को पिक कर लेते हैं ना कि जी अम्मी को तो खुद पता नहीं कि क्या चीज़ ये कहना चाहती हैं। और खुद जो है वो अपनी बात की वो कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती हैं। तो जब इस तरह से किसी इंसान को पता चल जाता है तो फिर वो इज्जत नहीं करता, तो बच्चे भी फिर माँ की इज्जत नहीं कर रहे होते हैं। तो बाउसूल रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो लोग पिछले लेक्चर्स नहीं सुन सके हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग का इंतजाम करवाया हुआ होता है, तो वो रिकॉर्डिंग्स वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद होती हैं और ग्रुप के ऊपर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी भेज जाती हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो आप सुन लें जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं, ठीक है। फिर बच्चों के मददगार बने, ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके थे कि हमेशा बी सपोर्टिव टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को इंसल्ट ना करें। कुछ माएँ जो होती हैं वो मोहब्बत मोहब्बत ही में जो है ना वो ऐसी बातें कहना शुरू हो जाती हैं कि जिससे बच्चे जो है वो इंसल्टेड फील करते हैं या दूसरों के सामने डिग्रेडेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बच्चों का। तो मजाक करने का तरीका भी जो है ना वो भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाना बुरी चीज होती है, मजाक करना जो है वो अच्छी चीज होती है, लेकिन किस वक्त करना जो है वो उड़ाने में तब्दील हो जाए, मजाक करना मजाक उड़ाने में तब्दील हो जाए, ये इंसान जो है वो भूल जाता है, तो उससे फिर नुकसान हो जाता है। मजाक उड़ाना हरगिज नहीं चाहिए, चाहे अपनी औलाद का ही क्यों ना हो। बच्चों को अपने काम खुद करने की तरबियत दें, ये मुआवाना मौजूद जो है वो हम पिछले आखिरी क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कि जब बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो उनको अपने काम खुद करने की आदत डालें, ताकि वो अपने पहनने ओढ़ने और खाने में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही जो है बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, तो शुरू में थोड़े इंडिपेंडेंट और फिर बाद में ज्यादा इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो डिपेंडेंट बनते हैं या उनको बनना चाहिए, ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंडेंट बना, सॉरी, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनडिपेंडेंट बनते हैं या उनको कम से कम बनाना चाहिए, ठीक है। तो उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें और जब वो उनको पूरा कर लें तो उसको खूब अप्रिशिएट करें, यानी उनकी तहसीन करें। बच्चे अपनी जिंदगी में मुश्किल को हल करके बहुत कुछ सीखते हैं। बाज माए ओवर टेम्परिंग यानी बेजा गुस्सा करती हैं और बच्चों को उल्टा बिगाड़ देती हैं, यानी जब वो उनको आप कोई जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चे शुरू में तो उनको नहीं पता होता ना, उनके पास तो तजुर्बा नहीं होता है, उनके पास जो है वो इल्म नहीं होता है, तो इस वजह से वो काम को गलत कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फिर माँ को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होता है कि उनको जो है वो डांट डपट ना करें, बल्कि ये सोचें कि भाई बच्चा है और बच्ची है तो उसने पहली दफा ये काम किया है तो उसको कहाँ से पता होगा कि इस काम को कैसे ठीक करना है, तो इस वजह से इससे गलती हो गई, तो सीखने का मौका देना, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंट बनाना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप जो है वो उनको घर के बाहर भेजना शुरू कर दें, ठीक है। इवन यानी लड़कों को भी घर से बाहर छोटे बच्चों को नहीं भेजना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग जो है वो अजीब उनके दिमाग होते हैं, बस अल्लाह उनके ऊपर उनको हिदायत अता फरमाए कि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ना वो कहते हैं कि जी बाहर जाए, बाहर का काम खुद करें, हत्ता कि बच्चियों को भी बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको पता भी होता है कि बाहर जो होते हैं वो बच्चों के खैरख्वाह लोग नहीं रहते हैं, वो अजनबी लोग होते हैं, वो दरिंदे होते हैं, बाहर जो है वो एक से बढ़कर एक दरिंदे रहते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों को किसी न किसी तरीके से वो काबू करके फिर उनके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, बहुत बुरा कर जाते हैं। ऐसे हकीकी वाकयात जो है वो हमें पता है, अखबारों में भी आपने पढ़े होंगे, और अगर आपने अखबारों में नहीं पढ़े तो हम आपको बता रहे हैं कि लोगों ने अपने ज़ाती हालात भी बताए। देखें कि छोटा बच्चा जब दुकान गया तो दुकान वाले ने फिर उसके साथ क्या किया, या छोटी बच्ची दुकान गई तो दुकान वाले ने उसके साथ फिर क्या किया। ठीक है, तो ये बहुत ही हॉरिफिक किस्म के वाकयात होते हैं, और दुनिया जो है ना वो फरिश्तों से भरी हुई नहीं है। ठीक है, दुनिया जो है वो ऐसे लोगों से भरी हुई है, तो बच्चों को बाहर नहीं भेजा करें। यानी पाकिस्तान इंडिया में तो रहने दें, अब जिन मुल्कों को हम सो कॉल्ड सेफ समझते हैं ना, उन मुल्कों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, वो सेफ उन्होंने जो है वो सिर्फ थोड़ा बहुत पुलिस के सिस्टम को थोड़ा बहुत बेहतर बना करके, और थोड़ा जो है वो कैमरे शैमरे लगा करके उन्होंने थोड़ा बहुत सेफ्टी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई भी होती है, लेकिन इस किस्म के जो दरिंदे सिफत लोग होते हैं ना, वो पुलिस की आंखों से बच करके अपना काम करना ये जानते हैं। ठीक है, और मुस्तकिल इसी की ताक में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से वो छुप करके बच करके वो ये काम कर जाए। ठीक है, तो सऊदी अरब के अंदर भी ऐसे वाकयात होते रहते हैं। ठीक है, सऊदी अरब जो कि है बजाहिर दूसरों दूसरी जगहों के मुकाबले में बजाहिर एक सेफ जगह है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी ऐसे वाकयात होते हैं। ठीक है, और जब वो वाकया हो जाता है ना, उसके बाद फिर अगर पुलिस पकड़ भी ले तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका क्या फायदा? पुलिस ने पकड़ लिया, उसने अगर सजा दे भी दी, वैसे तो अब यहां पर भी सजा वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से इबरत होती थी और आइंदा लोग ऐसी हरकतें करने से फिर दूर रहते थे, अब तो वो सजा वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो जब आपकी औलाद के साथ, आपकी बच्ची के साथ या आपके बच्चे के साथ ऐसा वाकया हो गया, और फिर उसके बाद पुलिस ने अगर उसको पकड़ भी लिया, तो अब आपको क्या फायदा उसके अंदर? जो होना था वो तो हो गया ना। ठीक है, तो पहले होश के नाखून लें और बाहर जो है ना वो ऐसे नहीं भेज दिया करें, खुद ही साथ लेकर के जाए। अभी बच्चे हैं और खुद ही साथ लेकर के जाए, ऐसे नहीं उनको बाहर भेज दिया करेंगे, जाओ जा करके दुकान से चीज लेकर के आ जाओ, जाओ जा करके फलाना काम करके आ जाओ, ये कर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ये नहीं होता, इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ये है कि घर के अंदर रहते हुए जो है ना बच्चों को जिम्मेदारियां दें, और उनकी गलतियों के ऊपर जो है वो सब्र बर्दाश्त से काम लें, और उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करें। ठीक है, अच्छा ये बात जो है करके इसके बाद आगे हजरत ने फरमाया था कि जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, इंसान जद्दोजहद से बहुत कुछ सीखता है, जद और जहद। ठीक है, जद का मतलब भी होता है कोशिश करना, मन जद्दा वजदा, कि जिसने मेहनत करी कोशिश करी उसने पा लिया, ये अरबी जुबान का एक मकूला भी है, मन जद्दा वजदा, वजदा का मतलब होता है पा लिया। ठीक है, तो जद का लफ्ज वहां से आया, और जहद का लफ्ज जो है वो जोहद, यानी मेहनत और मुशक्कत करना, उसको जोहद कहते हैं, इसी से लफ्ज जिहाद निकला। ठीक है, तो इंसान जद्दोजहद से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जद्दोजहद सिखाने की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को जो है वो धक्का दे करके आप घर से बाहर निकाल दें, या आप जो है वो उसको किसी इंतहाई खौफनाक किस्म के या खतरनाक किस्म के माहौल में भेज दें और फिर उससे कहें कि हाँ भी तुम जद्दोजहद करो। यहाँ पर हजरत एक बड़े, बहुत बड़े एक आलिम है इंडिया के, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो समंदर में धक्का देते हैं, हम अपने बच्चों को समंदर में धक्का देते हैं और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो गीले ना हो। ठीक है, समंदर में धक्का देते हैं, तवक्को करते हैं कि वो गीले ना हो। तो क्या मुराद थी उनकी? के स्कूल कॉलेज के जो गंदे गलीज माहौल के अंदर भेजते हैं और फिर उनसे ये तवक्को रखते हैं कि जी गुनाह में मुबतला नहीं होना। गीले होने से मुराद गुनाह में मुबतला हो जाना। ठीक है, तो ये जो जद्दोजहद का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपने औलाद को जो है वो गुनाह के माहौल के अंदर फेंक दें और कहें कि अच्छा ये अब जद्दोजहद करके इस गुनाह के माहौल से बचेगा, ये हमारे दीन की तालीम हरगिज नहीं है। ठीक है, तो बुरे माहौल से बचाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जद्दोजहद से यहाँ पर मुराद ये है कि काम करवाना, ठीक है, और वो अच्छे माहौल के अंदर ही, प्रोटेक्टेड माहौल के अंदर ही काम करवाना, बाकी अल्लाह ताला सिखा देगा, हर चीज खुद नहीं सिखानी होती कि प्रोटेक्टेड माहौल में फिर वो कैसे सीखेंगे और फिर कैसे होगा और ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, नहीं, उसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी जात रखी हुई है। ठीक है, मैं करवाऊंगा, तुम मेरा हुक्म मानो, तुम मेरी तालीमात के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपने बच्चों की तरबियत करो और उनके उनकी उनकी परवरिश करो, मैं उनके काम बनाऊंगा। ठीक है, तो जद्दोजहद का मतलब यहां पर कहने का यह है, अदद क्यों करो, क्यों फरमा रहे हैं फिर, जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड माहौल के अंदर जो है वो जद्दोजहद करनी है, और हजरत जो है वो यहाँ प्रोटेक्टेड माहौल का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, अगर हमारे ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो हम उससे घबराए नहीं। ठीक है, हम उससे घबराए नहीं, ये नहीं है कि आप किसी अपने बच्चों को जो है वो धक्के दे दे करके बाहर निकालते रहे और फिर उनसे जद्दोजहद की जो है वो तवक्को करते रहे। तो फरमाया कि जिंदगी जद्दोजहद का काम का नाम है, इंसान जद्दोजहद से बहुत कुछ सीखता है। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, ये बटरफ्लाई जिस जगह पर पैदा होती है, बटरफ्लाई ठीक है, तितली, तो ये जिस जगह पर पैदा होती है ना, तो वहां उसका एक शेल होता है, खोल होता है, तो उसमें से ये निकल करके बाहर आती है, प्यूपा शेल भी उसको गालमन कहते हैं, तो उसमें से ये निकल के बाहर आती है। एक आदमी ने एक बटरफ्लाई यानी तितली को देखा कि वो शेल अपने खोल से बाहर निकलना चाह रही थी, यानी वो अब इतनी बड़ी हो गई थी कि खोल से बाहर निकलने का उसका वक्त आ गया था। तो शेल की जो ओपनिंग थी यानी जो मुंह था वो बहुत छोटा था, और बटरफ्लाई को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था उसके अंदर से निकलने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं तितली की मदद कर देता हूं, तो उसने उस शेल के मुंह को किसी तरीके से, जैसे ब्लेड वगैरह से या किसी और चीज से, बड़ा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा उसने काट पाट दिया ताकि उसका मुंह जो है वो बड़ा हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि वो तितली जल्दी से बाहर निकल आई, मगर उस बंदे ने देखा कि तितली के जिस्म में पानी भी बहुत भरा हुआ था, जैसे एडीमा, एडीमा ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर आपके बॉडी का जो पानी है ना वो ड्रेन आउट नहीं होता, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती। तो किडनी का काम क्या होता है कि इंसान की बदन के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है उसको फिर बाहर निकालते हैं ना, लेकिन जिसकी किडनी काम नहीं कर रही होती तो पानी जो है वो अंदर ही रह जाता है, तो फिर इससे एडीमा हो जाता है। तो एडीमा में फिर बाकायदा नजर आता है कि जैसे कि स्किन के नीचे पानी है, ठीक है, वो बाकायदा यानी स्पंजी हो जाती है स्किन ना, तो उसके पानी उसके भी जिस्म में ऐसा लग रहा था कि ऐसे बहुत पानी भरा भरा हुआ है, और उसके पर भी बहुत छोटे थे, पर भी सही तरह से डेवलप नहीं हुए, तो वो तितली उड़ी नहीं सकती थी, बस चल सकती थी, यानी वो कीड़ा होता है ना तितली, तो उसके अंदर खूबसूरती तो उसके परों की वजह से आती है, लेकिन पर जो है वो डेवलप ही नहीं हुए, ठीक है, और वो उन परों को फड़फड़ा करके उड़ ही नहीं सकती थी, तो बस अब वो कीड़ा जो है वो जमीन पर एक कीड़े की तरीके से ही चल रही थी। तो उसने फिर किसी को बताया कि भाई ये ऐसा हुआ, तो उस बंदे ने जो कि एक्सपर्ट था ना, इसने किसी एक्सपर्ट से इसकी ये थोड़ा सा अकलमंद भी था, ठीक है, यानी इसको इल्म नहीं था लेकिन इतना सेंस था कि भाई मुझे किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए कि मैंने ये क्या किया और कि क्यों ऐसा हो गया। तो उसने किसी एक्सपर्ट से जाके पूछा, तो उस एक्सपर्ट ने उसे समझाया कि असल में बात यह है कि तितली जब पैदा होती है तो पैदा होने से पहले उसके जिस्म के अंदर इजाफी पानी होता है, और अल्लाह ताला ने उसके लिए शेल की ओपनिंग जो है ना वो, यानी जो मुंह है वो छोटी बना दी है। इस छोटी ओपनिंग में से गुजरते हुए तितली जोर लगाती है, जब जोर लगाती है तो उसके जिस्म का पानी उसके परों में चला जाता है, तो उसका जिस्म भी सेहतमंद हो जाता है और उसके पर भी बड़े हो जाते हैं। अब चूंकि ये वाली जो तितली है तो तुमने तो इसके ओपनिंग को जो है वो बड़ा कर दिया ना, तो अब चूंकि ये मशक्कत के बगैर निकली है लिहाजा उसके जिस्म में पानी भी भरा हुआ है, ये बीमार भी है और उसके पर भी छोटे हैं, तो वो जो फायदा हासिल करना चाहता था उसने उल्टा नुकसान कर दिया। यानी जो तितली का वो फायदा करना चाहता था ना कि उसको जो है वो तकलीफ से बचा ले, तो उल्टा उसने जो है ना वो अपनी कम इल्मी और कम समझी की वजह से उस तितली का नुकसान कर दिया। ठीक है, तो जिस तरह तितली के लिए अल्लाह ताला ने कानून बना दिया है कि ये मेहनत मशक्कत से निकलेगी तो उसकी सेहत अच्छी होगी, इंसानों के लिए भी अल्लाह ताला का मामला ऐसा ही। अल्लाह ताला बसा औकात ऐसे हालात बना देते हैं कि मेरा बंदा मशक्कत के साथ उसमें से निकले और उसकी रूहानी सेहत अच्छी हो जाए और मेरा कुर्ब नसीब हो जाए। तो ये जो मुश्किल हालात अगर हमारी जिंदगी में आ जाते हैं ना, तो उससे फिर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये दरअसल हमें ऊंचा उड़ाने के लिए, वो है ना एक शेर के, तुंदिए बादे मुखालिफ से, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी जो अगेंस्ट द ये जो विंड चल रही है ना, ये मतलब ना कि आप कभी बहुत तेज जो है वो हवा चलनी शुरू हो जाती है, हत्ता कि आप चल भी नहीं पाते हैं उसके अंदर, जिस तरफ आप चलना चाहते हैं उसी के खिलाफ जो है वो हवा चल रही है, तो हवा आपको आगे चलने भी नहीं देती है। तो इसको शायर ने कहा तुंदी, ठीक है, यानी जो सख्ती और ये जो तुंद हवा चल रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है, और ये बाद, बाद तो हवा को कहते हैं, और मुखालिफ यानी वो आपके चलने के डायरेक्शन के खिलाफ बहुत तेज हवा जो चल रही है ना, इससे घबराए नहीं, बल्कि ये तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है, बजाय ऐसा लग रहा है कि आपको ये रोक रही है। तो ये बात बहुत ही अहम है, क्योंकि अब गलतियां हमने अक्सर खुद ही करी हुई होती हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो हालात जो हैं वो बहुत ही नामवाफिक हो जाते हैं, बहुत ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भाई अब हमने पहले जो है वो तालीम और तरबियत की जो सख्तियां थी वो बर्दाश्त करी नहीं। ठीक है भाई, तालीम और तरबियत करना जो है ना, ये भी एक एक सख्त चीज होती है ना, ये भी एक मुश्किल काम होता है। तो जो ये मुश्किल काम अपनी जिंदगी में पहले कर लेता है तो उसके लिए बाद में जो है वो आसानी हो जाती है। ठीक है, और जिसने पहले ये मुश्किल काम नहीं किया बल्कि जो है वो अवॉइड करता रहा, अवॉइड करता रहा, अवॉइड करता रहा, तो फिर जाहिर है फिर बाद में जा करके ये मुश्किल तो पेश आएगी ना, तो फिर बाद में जो है वो इस मुश्किल को सहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैहि भी फरमाया करते थे कि हर इंसान की ना अपनी एक चक्की होती है, चक्की ये वो वाली चक्की जो कि पीस करके जो है ना वो आटे को, वो गंदम को पीसा जाता था और उससे फिर वो आटा बनता था, फिर आटे से जो है वो रोटी बनाई जाती थी। पिसा हुआ गंदम घर में नहीं आता था, अब तो ये आटा हम बाजार से जाके खरीद लेते हैं ना, और चक्की भी जो बाजार में भी चक्की होती है वो भी मैकेनिकल होती है, मशीन होती है, उसके अंदर जो है वो गंदम उंडेलते हैं और जो है वो मशीन जो है वो उसको ग्राउंड करके आटा बना करके, पहले ऐसे नहीं होता था, बल्कि घरों के अंदर चक्की होती थी और वो चक्की के दो पार्ट होते थे और वो असल पत्थर के बने हुए होते थे। ठीक है, तो उन दोनों पार्टों के बीच में जो है ना वो गंदम को डालते रहते थे और उस चक्की को ऐसे घुमाते रहते थे, पकड़ पकड़ ऐसे घुमाते रहते थे, और ये काम कौन करता था, ये घर की औरतें करती थी, ये मर्द नहीं करते थे, घर की औरतें करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से गंदम को पीस करके फिर आटा बनाया जाता था और फिर उससे रोटी बनती थी। तो हज़रत फरमाया करते थे कि हर इंसान की अपनी एक चक्की होती है कि जिसको उसे खुद पीसना होता है, यानी हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मुश्किल मरहला रखा होता है कि जिसको उसने खुद ही जो है ना वो बेयर करना होता है, खुद ही उसके थ्रू उसको गुजरना होता है। तो जो उस मुश्किल मरहले से गुजर जाता है तो बाद में फिर उसके लिए आसानी हो जाती है, और जो नहीं गुजरता तो उसके लिए फिर बाद में फिर मुश्किल ही मुश्किल होती है। जैसे कि हम अपने बच्चों को बार बार ये बोलते हैं ना कि अभी तुम लग के पढ़ दो, अभी तुम जो है वो मेहनत कर लो, बाद में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, है ना, अच्छे ग्रेड आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब, वो एडमिशन मिल जाएगा, फिर जो है वो अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चों को ये बताते हैं ना कि अभी मुश्किल उठा लो, अभी मुश्किल उठा लो, वरना बाद में जो है वो पत्ते चुनने पड़ेंगे, बाद में जो तुम्हें जो है ना वो जूते पॉलिश करने पड़ेंगे, बाद में तुम्हें जो है वो मुश्किल उठानी पड़ेगी। तो भाई यही उसूल जो है वो हमारे ऊपर भी तो अप्लाई होता है ना, ठीक है, यही उसूल हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, तो हम अपने आप को इससे नहीं कर सकते ना, एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते इससे ना, ठीक है। बहरहाल तो बातें तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन उम्मीद है कि बात इतने से समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला ने किसी नफ्स के ऊपर उसकी वसत से ज्यादा तकलीफ नहीं डाली, जितनी तकलीफ वो सह सकता है, हर नफ्स, हर इंसान जितनी तकलीफ सह सकता है ना, अल्लाह ताला को पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो अल्लाह ताला उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसके ऊपर तकलीफ डालते हैं। यानी किसी इंसान की जिंदगी की जो चक्की होती है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उसको ग्राउंड ना कर सके, वो उसको चला ना सके, ठीक है, लेकिन इंसान नाशुक्री करना शुरू कर देता है और कंप्लेन करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज टू मच फॉर, ठीक है, दिस इज टू मच फॉर मी, मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि हालांकि अल्लाह ताला को पता है कि ये काम कर सकता, ये इस मुश्किल मुसीबत को जो है वो सह सकता है, ठीक है, लेकिन जब इंसान जो है वो ये कहता है कि नहीं, दिस इज टू मच फॉर मी, तो वो दरअसल जो है ना वो नाशुक्री कर रहा होता है अल्लाह ताला के जो 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 कैलकुलेशन है उसको गलत करार दे रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेरी वसत से ज्यादा बोझ डाल दिया है, ठीक है। तो ये जो कलमा होता है ना, इस तरह की बात कह देना, इस तरह की बात सोचना कि अल्लाह ताला ने उसकी वसत से ज्यादा उसके ऊपर मुसीबत डाल दी है, तो ये भी एक कलमा कुफर है, ये भी एक कलमा कुफर है, ठीक है। इसको कहने से आपको कोई मुफ्ती साहब काफिर होने का फतवा जरूर नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन है ये कलमा कुफर ही, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत का जो है ना किया जा रहा है, अल्लाह ताला की रहमत का इनकार किया जा रहा है, तो ये कलमा कुफर है, इससे हमें तौबा कर लेनी चाहिए। बस ये कहें कि हाँ, भी एक मुश्किल मेरे ऊपर आ गई है, लेकिन मेरे रब की मर्जी है, मेरे रब ने जो है मेरे ऊपर एक मुश्किल डाली है, अब मैं रब से जो है वो इसकी इससे निकलने की दुआ भी मांगू, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करूँ, अल्लाह ताला से मदद मांगू, और अपने गलतियों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँ, कि भाई कोई ना कोई यकीन मैंने गलती कर ली होगी कि जिसकी वजह से जो है मेरे ऊपर ये मुसीबत अल्लाह ताला ने डाली है, अल्लाह ताला मुझे उस मुसीबत से निकलने की तौफीक अता फरमाए, और बस इस तरीके से इंसान जो है वो अपनी मुसीबत से डील करे, ठीक है। अच्छा, आगे अगला मौजूद हैं रखा है इसके अंदर कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत में औरत ये कभी ना भूले कि खुद भी अच्छा खाए, अच्छा सोए और अच्छी एक्सरसाइज करे, ठीक है। अच्छा खाए से मुराद जो है वो ज्यादा खाना नहीं होता, बल्कि अच्छा खाने का मतलब ये होता है कि जो खाए वो गजा जो है ना वो अच्छी गजा हो, यानी जंक फूड और ऐसा खाना जो है वो जिससे कि बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसे
फूड
खाना
जस्ट खाते
ज्यादा से ज्यादा
हैं,
अवॉइड करने की
हम
कोशिश करें।
जंक फूड ज्यादा नहीं खाया, बट चाहे किसान में हम कुछ खाए भी नहीं करते रहे। जब
तो
भूख लगता रमदिया कमी से कुछ, आप
भाई
है ना जी, जब भी भूख लगता
ठीक है, अब देखिए ऐसे क्लास ली जाएगी तो फिर क्या फायदा भाई, ठीक है, बातें भी कर रहे हैं और बात सुन नहीं रहे, तो चले, अच्छा खाए और अच्छा सोए, अच्छा सोए का मतलब क्या होता है कि जो सोने का वक्त है ना उस पर सोए, ठीक है, जो सोने का वक्त होता है उसके ऊपर सोए, उस वक्त में सोए, और जो जागने का वक्त होता है उस वक्त में जागे। अच्छा सोने का मतलब ये नहीं होता कि जागने के वक्त में सो रहे हैं, ठीक है, और सोने के वक्त में जाग रहे हैं, तो इसको अच्छा सोना नहीं कहते हैं। तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, कुरान का बताया हुआ निज़ाम, कुरान भी बताता है कि अल्लाह ताला ने रात को जो है वो नींद के लिए बनाया, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम ने भी हमें बताया, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते। अब तो जो है वो जो कुरान और सुन्नत के जो डिनायर्स हैं, काफिर हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जी बॉडी का सर्कैडियन साइकिल होता है, तो रिदम होता है वो बॉडी का, और वो इस तरीके से ऑपरेट करता है कि रात के वक्त जो है वो आप सोएं तब आपकी नींद पूरी होगी, और दिन के वक्त जो है वो आप जागें तब आपकी जो है वो बॉडी सही तरीके से फंक्शन करेगी। तो अच्छा सोना, ठीक है, तो ख्वातीन को खसूसा जो है ना वो अपने घर की रूटीन को बेहतर बनाने की मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले भी बहुत बात हो चुकी, रमजान मुबारक के दुरूस कुरान के अंदर भी इसके ऊपर बहुत बात हुई थी। ये जो दुनिया के अंदर टाइमिंग अपसाइड डाउन कर दी गई है ना, तो ये एक्चुअली दज्जाली निज़ाम है, जिसका मकसद क्या है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो हम कम अज़ कम इस दज्जाली निज़ाम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, रात के वक्त जल्दी सो जाए, रात को 10 बजे तक जो है वो सोने की तरतीब बनानी चाहिए, और तहज्जुद के वक्त में उठने की तरतीब बनानी चाहिए। अच्छा, तो औरत को चाहिए कि खुद भी अच्छा खाए, अच्छा सोए और अच्छी एक्सरसाइज करें। अच्छी एक्सरसाइज यानी घर के अंदर जो है वो बाकायदा एक्सरसाइज का एक निज़ाम रखना चाहिए। ट्रेडमिल अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर से खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, और ट्रेडमिल को इस्तेमाल भी करना चाहिए, तौलिये सुखाने के लिए नहीं बल्कि वॉकिंग करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ट्रेडमिल के बगैर भी की जा सकती है। अगर घर में वॉकिंग करने की जगह मौजूद है तो घर में वॉकिंग भी की जा सकती है, लेकिन वॉकिंग के अलावा भी एक्सरसाइज हैं जो कि लेट के करी जा सकती हैं। और यानी अब तो जिस तरह से कुकिंग रेसिपीज जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर लोग देख लेते हैं और इससे बड़े अच्छे अच्छे खाने बना लेते हैं, उसी तरह से यूट्यूब के ऊपर अब खवातीन हैं आप लोग, तो आपको तो वो वाला मसला भी नहीं जो कि मर्दों का है कि भाई वो एक्सरसाइज वीडियोस के अंदर जो है वो औरतें होती हैं, लेकिन किसी तरीके से एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं, ठीक है, या आपने किसी जानने वाली से सीखने हैं जिसने किसी और से उसको सीखा हुआ, तो एक्सरसाइजेस सीख करके लेटे लेटे एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, खड़े खड़े एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खवातीन इन बातों का शऊर रखती हैं तो उन्होंने ये शेड्यूल जो है वो अपना बनाया हुआ है, तो उनसे पूछ लेना चाहिए। तो अच्छी एक्सरसाइजेस करें, ये बहाने नहीं बनाया करें कि जिम जाऊंगी तो एक्सरसाइज करूंगी, तो इस वजह से मुझे जिम जाना, ठीक है, वो जिमनास्टिक्स या जिमनेजियम जो होता है ना जहाँ पे एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई होती हैं वहां पे जाना है, ठीक है, ये जिम जाने की ना तो कोई जरूरत होती है, इंसान घर के अंदर जो है वो काम कर सकता है, और दूसरा ये है कि जिम जाना जो होता है वो अच्छी बात भी नहीं होती, क्योंकि जो जो जिम्स होते हैं ना तो इनमें अच्छी मखलूक नहीं आती है, ठीक है। एक तो वहां पे म्यूजिक, अब दुनिया में कोई ऐसी जगह आपको शाज और नादर मिले कि जहां पे म्यूजिक ना हो, ठीक है, हर जगह म्यूजिक होती है, और जिम्स के अंदर तो और ज्यादा म्यूजिक होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि म्यूजिक हो या ना हो, वहाँ लोग भी इस किस्म के आते हैं कि जिनके कंपनी में जाना है वैसे भी मुनासिब नहीं होता, और औरत को तो वैसे भी घर से बाहर जो है वो कम कम से कम जितना जरूरत हो उसके हिसाब से निकलना चाहिए। अब तो जूम सेशंस होते हैं एक्सरसाइज के, घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोगों से जो है वो जब पता चलता है एक, तो फिर उसके बाद इंसान ये सारी चीजें सीख सकता है ना। अच्छा, जब अपनी सेहत अच्छी रहेगी तो बच्चों के साथ भी मामला अच्छा होगा। देखा यह गया है कि औरतें बाज दफा स्ट्रेसफुल यानी दबाव में होती हैं और चिड़चिड़ी होती हैं और छोटी छोटी बात पर चीखती हैं, और फिर बच्चे दूसरों को बताते हैं कि देखो मामा शाउट्स यानी अम्मी चीखती हैं, ठीक है, तो बंदा स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस में क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है कि उसको पता नहीं होता कि भाई अपने जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसको डील कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो जब उसने नहीं सीखा हुआ होता, या अगर सीखा भी होता है तो उस पर अमल नहीं कर रहा होता, भाई इल्म हासिल कर लिया लेकिन इल्म के ऊपर अमल भी तो करना होता है ना, अगर अमल नहीं कर रहे हैं आप तो फिर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सही से मैनेज नहीं करेंगे, और जाहिर है फिर उसकी मिसमैनेजमेंट करेंगे तो फिर मुंह से फिर चीख पुकार ही निकलेगी, और फिर इसकी वजह से आप अच्छे खासे जो है वो बदनाम भी हो जाते हैं। अच्छा क्या, हत्ता कि अपनी ही औलाद के सामने माँ जो है वो बदनाम हो जाती है, पर औलाद दूसरों को बता रही होती है कि मेरी अम्मा जो, मेरी अम्मा बहुत चीखती हैं, मेरी अम्मा बहुत चीखती हैं। पिछले दिनों जो है वो एक बेटे ने, ठीक है, किसी ने हमें बताया कि उनके बेटे ने उनकी अम्मा को एक कार्टून वीडियो भेजी, ठीक है। वो कार्टून वीडियो क्या थी कि उसमें जो है ना वो दो तीन माएं बैठी हुई थी, ठीक है, और एक माँ जो है वो दूसरी माँ से कह रही थी कि हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते, हमारे बच्चे जो है वो हमें अपना बताते ही नहीं, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, ठीक है। तो फिर उस कार्टून वीडियो में दूसरा जो उन्होंने फ्रेम दिखाया वो क्या था कि बच्चे ने कोई एक बात कही कि अम्मी मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है, या मुझे इस चीज में मुश्किल हो रही है, और जैसे ही बच्चे ने ये बात कही वैसे ही जो उसकी माँ थी उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कार्टून था, है ना, एक तरफ जो है वो दो तीन माएं बैठ करके बच्चों का दुखड़ा रो रही हैं कि हमसे बात क्यों नहीं करते, और हमसे जो है वो अपने दिल का हाल क्यों नहीं बयान करते, और दूसरी तरफ जो है वो चीख पुकार वगैरह। और यही कार्टून वीडियो जो है वो लड़का अब चूंकि अब इतना बड़ा हो गया कि अब उसको अम्मा का डर नहीं है। अरे छोटे बच्चे होते हैं ना तो अम्मा का डर होता है उस वक्त, तो इस किस्म के काम नहीं कर सकते, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं अब वो डर शर जो होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसने बाकायदा ये वीडियो जो है वो अपनी अम्मा को भेज दी, ठीक है, कि देखें ये आप ये करती हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे नहीं क्या करें, कभी भी बच्चों को हराम फन के लिए, ये उर्दू में लिखा है तो इस पर शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन हराम एंटरटेनमेंट, ठीक है, हराम एंटरटेनमेंट के लिए एनकरेज ना करें, ठीक है, और ऐसे हौसला अफजाई ना करें कि कभी भी शैतान को मौका ना दें कि वो आपके बच्चों की बेबी सिटिंग यानी हम नशीनी करे। इसका क्या मतलब हराम फन? तो हराम फन में एक चीज जो है ना वो तो वीडियो गेम्स, ठीक है, ये वीडियो गेम्स जो है ना इनको शरिया कंप्लायंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कुछ अजीब लोग हैं, उन्होंने वीडियो गेम्स को भी शरिया कंप्लायंट बनाने की कोशिश करी कि वीडियो गेम के अंदर म्यूजिक ना हो तो अब वो शरिया कंप्लायंट बन जाए, यानी वो शरीयत के मुताबिक ठीक हो जाएंगे, वीडियो गेम में से म्यूजिक निकाल दें, या कोई ऐसा वीडियो गेम बना दिया गया जिसके अंदर जो है वो काबतुल्ला को शूट करने वाला काम ना होता हो, ठीक है, तो अब ये वीडियो गेम जो है वो शरिया कंप्लायंट वीडियो गेम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्क्रीन की जो एडिक्शन होती है ना ये कभी भी उसमें से खत्म नहीं आप कर सकते, ठीक है। उसमें से म्यूजिक निकाल करके, उसमें से जो है वो औरतों की पिक्चर्स को निकाल करके, या उसके अंदर से काबतुल्ला को और मस्जिद नबवी को ब्लास्ट करने वाली जो बातें इन लोगों ने वीडियो गेम्स में बनाई हुई है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि उस बिल्डिंग को जो है ना वो अगर आप अपने गन से फायर करेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो बिल्डिंग बिल्कुल काबतुल्ला की शक्ल की होती है। ये पबजी का तो बड़ा मशहूर भी हुआ था इसकी वजह से, लेकिन खाली पबजी नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे गेम्स हैं कि जिनके अंदर ऐसी बिल्डिंग होती है कि जो कि बिल्कुल मस्जिद नबवी की तरह लगती है, या उसका दरवाजा होता है उसके अंदर जो कि ईविल का डोर होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है बाकायदा कि ये ना इस डोर के पीछे ईविल रहता है, तो अब इस डोर के ऊपर फायर करने से तुम्हें इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो डोर क्या होता है, वो बिल्कुल मस्जिद नबवी का डोर होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह की चीजें वीडियो गेम में से निकाल देंगे तो फिर ये हलाल एंटरटेनमेंट हो जाएगी, नहीं, ये हलाल एंटरटेनमेंट फिर भी नहीं होगी, ठीक है, तो ये हराम फन ही होगा, क्योंकि इसके अंदर एडिक्शन होती है, और इसके अंदर बहुत दूसरे बड़े बड़े मसले उसके अंदर से आप कभी निकाल ही नहीं सकते। तो वीडियो गेम्स के लिए कभी भी बच्चों को जो है वो इनकरेज ना करें, और बच्चों के हाथ में टैब्स दे देना, हम देखते हैं ना ये कभी बाजार में गए, कभी जो है वो दुकान में जाकर के कुछ देख रहे हैं तो पता चला, हम एक पेंट पेंट खरीदने के लिए एक दुकान में गए ना, तो हम लोग जो है वो पेंट देख रहे थे कि भाई ये वाला कलर मुनासिब रहेगा, ये वाला कलर, इतने में एक फैमिली आई, मियाँ बीवी और दो बच्चे या तीन बच्चे थे उनके। बच्चों को उन्होंने बिठाया वहां पर, जो टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी, और मियाँ बीवी जो है वो खुद जाके पेंट्स देखना शुरू हो गए। हर बच्चे के हाथ में एक टैब, और वो लगा हुआ उस टैब के अंदर। और उसी तरीके से और भी जगहों पे नजर आता है, छोटे बच्चों बस टैब के बगैर तो वो जी नहीं सकते। तो ये जो आपने टैब दिया हुआ है जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं, मुस्तकिल कोई गेम खेल रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो भाई ये उनके लिए जहर होते हैं। तो ये हराम फन के लिए उनको इनकरेज ना करें, चाहे उसके ऊपर वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, और फिर सेलफोन वगैरह, हेलफोन्स जिनको हमारे अज्जा कहा करते थे, तो सेलफोन की एडिक्शन से भी उनको जितना जितना देर तक दूर रख सकते हैं उतना जो है वो दूर रखें। बड़ी उम्र में आने के बाद फिर उनको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ जाता है आज के दौर में, लेकिन वो भी एक बड़ी उम्र में आने के बाद, उससे पहले तो बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, फिर ये जो फोन्स होते हैं ना, ये टैब्स होते हैं, ये फिर बच्चे की बेबी सिटिंग कर रहे, यानी माँ ने जो है वो खुद तो संभालना नहीं है, तो जिस तरह मेड के हवाले कर दिया जाता है ना, जो लोग मेड को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों को मेड के हवाले कर देते हैं, और बाकी लोग जो है जो मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फोन के हवाले कर देते हैं, या टीवी के हवाले कर देते हैं, स्क्रीन के हवाले कर देते हैं अपने बच्चों को। तो फिर जिस तरह मेड बेबी सिटिंग सिटिंग करती थी, उसी तरीके से अब जो है वो ये टैब्स और फोन है वो बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं, ताकि बस माँ का सर ना खाएं। ठीक है, तो फिर अभी नहीं खाएंगे तो बाद में जाके खाएंगे, ठीक है, या जहन्नुम में जाकर के खाएंगे अगर अभी नहीं खाएंगे तो। डोंट जस्ट टॉक द टॉक एंड वॉक द वॉक, ठीक है, यानी ऐसे ही बात बराए बात ना करें और चाल बराए चाल ना चलें। हर काम का कोई मकसद होना चाहिए। क्या मतलब कि अंग्रेजी का मुहावरा है, डोंट जस्ट टॉक द टॉक एंड वॉक द वॉक, बल्कि क्या है, वॉक द टॉक, इंस्टेड यू शुड वॉक द टॉक, यानी जो आप बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप अमल भी करें। ठीक है, सिर्फ बात बराए बात ना करें। तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो इनको अमल में भी लेकर के आना है, लेकिन इससे पहले जो है वो बात को अच्छी तरीके से समझना भी है। अगला जो मौजू है, नेक औलाद के लिए खुद नेक बने, सबसे मुश्किल काम, तो ये इंशाल्लाह अपन अगली क्लास के अंदर आए, यानी अगले बुध के दिन हम पढ़ेंगे। अब तक जो बात हुई है इसके ऊपर कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप चैट विंडो पे लिख करके पूछ सकती हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल की बात की जो जो तरतीब है वो आज से शुरू हो गई है, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। पर आपकी जो बाकी क्लासेस इस हफ्ते में नहीं हो सकी हैं तो वो भी फिर अगले हफ्ते दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तकरार की जो क्लासेस होती हैं, तो जो खवातीन उनको ज्वाइन करती हैं तो वो मजीद फायदा पाती हैं कि जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई है उसकी एक रिपीटेशन भी हो जाती है, उसके नोट्स भी बन जाते हैं, उससे उनको समझना और अमल में लाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो खवातीन तकरार में नहीं है तो उनको पूछ लेना चाहिए कैसे वो तकरार के अंदर शामिल हो सकती हैं, तकरार के बगैर जो है वो बात अक्सर समझ में ही नहीं आती है। तफसीर की क्लास 2 दिन करा दीजिए, ऐसा पॉसिबल है? पहले होती थी 2 दिन होती थी, बल्कि शायद पहले तो 3 दिन होती थी, लेकिन उसको फिर रिड्यूस किया गया है। आप जो तफसीर की क्लास हो चुकी होती है ना, उसको सुन करके और उसको समझ करके उसको अमल में लाने की ज्यादा कोशिश करें। 2 दिन की क्लास होने से इतना फायदा नहीं होगा जितना कि एक क्लास जो हो चुकी है ना उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने से फायदा होगा। ठीक है, तो हर एक के लिए हर चीज मुनासिब नहीं रहती, अब वो एक ही दिन तफसीर की क्लास आजकल हो रही है उसी। और दूसरा ये कि जो जुमे का जो दर्स होता है ना, वो भी दर्स कुरान ही होता है, और उसमें भी हम ये सूरह नाम ही की तफसीर लेकर के चल रहे हैं, तो 2 दिन तो एक्चुअली ऑलरेडी होती है तफसीर की क्लास। आप कह रही हैं कि 3 दिन करते हो, 3 दिन अभी हम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। वाह खुदा। एंड देयर इज आल्सो द मेंस क्लास। हाँ मेंस क्लास जो है वो भी रात को हो रही होती है, वो भी जो है वो तफसीली क्लास होती है, उसके लिंक भी जो है वो खवातीन के ग्रुप्स के अंदर भेजा जा रहा होता है। तो क्वांटिटी ऑफ इल्म तो बहुत है इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना, वो इल्म की क्वांटिटी का मसला नहीं है, बहुत ज्यादा इल्म इस वक्त इजीली एक्सेसिबल मौजूद है। इस वक्त जो मसला हो रहा है वो ये है कि हम इल्म को समझ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट द द द डॉट्स, ठीक है, एंड कंक्लूड ए द राइट कंक्लूजन्स। ये काम हम नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम हमारे अंदर तलब खत्म हो गई है, हमारे अंदर जो है वो यकसुई खत्म हो गई है। तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करेंगे तब थोड़े इल्म से ज्यादा फायदा हो, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा इल्म तो होता है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा हो, ठीक। तो यकसुई हासिल करने की ज्यादा कोशिश करें, इसके बाद ज्यादा मेहनत करें, अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।